Godlywood Studios presents ब्रह्मकुमारीज पॉडकास्ट। जिंदगी बने आसान।
नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर आपकी संकल्प शक्ति पॉजिटिविटी की तरफ ज़्यादा केंद्रित है तो आप महसूस करेंगे कि धीरे धीरे आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो आपको प्रॉब्लम्स नज़र नहीं आएंगी, वो एक अपॉर्चुनिटी नज़र आएगी अपने आप को और बेहतर बनाने के लिए। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ है जाने माने मनोचिकित्सक डॉक्टर गिरीश पटेल जी। ओम शांति, वेलकम टू आवर शो।
ओम शांति।
डॉक्टर साहब, हमने पिछले कुछ एपिसोड्स में बातें की थी कुछ मेंटल डिजीज़ के बारे में, जिसमें हमने पैनिक डिसऑर्डर की बात की थी, एनजाइटी की बात की थी और फोबिया की बात की थी। अब इसी ग्रुप में क्या कोई और बीमारियां हैं जिनके बारे में हमें रोशनी डालने की ज़रूरत है अभी?
बिल्कुल, यह जो सारा ग्रुप है उसमें एक रेयर है, इतना बहुत कॉमन नहीं, परंतु फिर भी इस पर अच्छे से चर्चा होनी चाहिए, लोगों को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये बात अचानक होती है। जिसको कहा गया है PTSD, है ना, इसका फुल फॉर्म है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। कि जब ट्रॉमा होता है कहीं, है ना, बहुत बड़ा ट्रॉमा कि जिससे व्यक्ति बच गया, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया कि भी 3 लोगों की मृत्यु हो गई, चौथा व्यक्ति बच गया, जब वॉर होती है, जब आसपास में कई लोग मर गए कुछ लोग बच गए, जब भूकंप आता है, सुनामी आती है
जी,
या तो टेररिस्ट अटैक, जब बॉम्बे में टेररिस्ट अटैक हुआ तब जिन्होंने वो पूरा देखा था, है ना, कुछ तो वहां पर सिक्योरिटी गार्ड वाले भी थे कि जो कुछ लोग बच गए
जी,
जिन्होंने देखा कितने लोग मर रहे हैं, तो उनको ये बीमारी हो जाती है।
ओके।
क्योंकि पोस्ट ट्रॉमेटिक, वो ट्रॉमा हुआ उसके बाद एक सीरियस इफेक्ट होती है।
ओके।
ना, या वो तो नींद में से जाग जाएंगे, अचानक नर्वस हो जाते हैं, है ना, रोने लगेंगे, एंग्जाइटी के सिम्टम्स अधिकतर एंग्जाइटी के ही होते हैं।
ओके।
लेकिन वो सीरियस होता है
जी,
जैसे नहीं पैनिक अटैक आता है ना, ऐसा वो अचानक उनको इफेक्ट हो जाती है।
ओके।
वो कॉन्शियसली शायद उसके बारे में न भी सोचते हो, जब अनकॉन्शियसली भी वो बात सरफेस पे आती है तो वह सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट करती है
जी।
तो है ना, इस जब भी ऐसा हो तो एक तो पहले से हमें तैयार रहना चाहिए कि वैसा हो सकता है, और जिनको हुआ है उनको भी ठीक से डील करना
जी। तो आसपास के जो उनके रिलेटिव्स हैं उनका क्या रोल होना चाहिए? अगर किसी व्यक्ति को ये बीमारी हो जाए तो उनके रिलेटिव्स क्या कर सकते हैं जिससे वो बाहर निकल पाए?
एक तो उसे बहुत अच्छा सपोर्ट देना चाहिए, है ना, बार बार उसे सपोर्ट दे
जी,
है ना। इसका जो सारा पॉजिटिव पहलू है, सच तो देखेंगे तो ऐसा किसी के भी साथ नहीं होना चाहिए, परंतु फिर भी उसमें पॉजिटिव पहलू तो यह है कि वह व्यक्ति बच गया है। बल कहना आसान है, करना बहुत बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी कोई भी तरीके से रिपीट रिपीट करा करके ये बात हो कि इसमें आप बच गए
जी,
ना, आपके साथ ही अच्छा हुआ, तो भी अगर उसके सबकॉन्शियस में गया, क्योंकि PTSD के पीछे जो पूरा कारण है वह है वह यादें, जो घटना उन्होंने देखी है उसकी यादें हैं। दूसरा उसमें यह भी एक ट्रिमेंडस एंग्जाइटी है कि फिर से हुआ तो, दोबारा भी ऐसा हुआ तो क्या, तो वह सोच के भी PTSD होता है।
तो डॉक्टर साहब, इस PTSD के कुछ और प्रकार भी होते हैं कि अपने आप में ये होल सम डिजीज है?
अपने आप में ही डिजीज है एक।
ओके।
ये जो सारा का ना एंग्जाइटी डिसऑर्डर,
हाँ जी,
उसमें से PTSD एक सब ग्रुप है।
ओके।
हाँ जी, और इसलिए इस पर चर्चा करनी चाहिए कि भी जिनको भी ऐसा हुआ है
जी,
एक तो जितना हो सके सपोर्ट दे,
बिल्कुल,
परंतु सपोर्ट काफी नहीं है ना, उसे भी मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स के पास ले जाना पड़ेगा।
ओके।
ना, तब वह ठीक होगा, और उसमें टाइम भी लग सकता है कि थोड़ा समय लग सकता है कि मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट भी उसके अच्छे से सपोर्ट दे, उसकी बातों को समझे। जो हमने वो टेक्निक्स बताई थी ना, डिसेंसिटाइजेशन ना, वो भी मदद कर सकती है, रिलैक्सेशन टेक्निक्स मदद कर सकती है। हमने फायर टेक्निक के बारे में भी चर्चा की है, सर टेक्निक, वो सब मेथड्स मदद रूप हो सकती है
जी।
परंतु इनको, मेरा मुख्य बात तो मैं बताना चाहता हूँ हमारे दर्शकों को कि इसकी ट्रीटमेंट जरूरी है।
अच्छा,
यह नहीं समझो कि भाई समय ही दवा है। बिल्कुल सत्य है कि समय ही दवा है, परंतु इसमें 6 मास 1 साल भी लग सकता है।
बिल्कुल,
और वो सारे दौरान में और बहुत सारी बीमारियां उस व्यक्ति को हो जाएगी कहीं। तो इसलिए उसका इलाज कराना जरूरी है।
बिल्कुल डॉक्टर साहब, ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो सेल्फ हेल्प भी कुछ कर सकता है इसमें, या फिर आपको मेडिसिन और डॉक्टर्स की ही जरूरत है?
सेल्फ हेल्प डेफिनेटली हेल्प करेगा।
अच्छा,
यह कन्विंस कराना बहुत मुश्किल होता है, परंतु इस प्रकार से सेल्फ हेल्प की, जो मैंने कहा कि भी मैं बच गया
जी,
है ना, वो एक बात। और दूसरा है, अब आपने वो अनुभव किया है
जी,
है ना, इतना एक भयानक आपने अनुभव किया है, तो दूसरों को ना हो उसके लिए अगर आप कोई कार्य करो।
ओके,
अपने सारे दिन का कुछ समय जरूर ऐसा निकालो कि इस प्रकार की समस्या औरों को ना हो, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। या तो जिनको ऐसी समस्याएं हुई है ना, जो इस प्रकार के शिकार है
जी,
वह कैसे उससे बाहर निकले, इसके लिए आप अच्छे से काउंसिलर हो सकते हैं।
बिल्कुल
ना, कई बार माना जाता है कि जो व्यक्ति उससे गुजरा है वह उसमें अच्छी तरह से समझा सकता है,
क्योंकि उन्होंने एक्सपीरियंस किया है।
हाँ, उन्होंने क्योंकि एक्सपीरियंस किया है तो वह एम्पथी से देख पाते हैं
जी। बिल्कुल
नहीं, और लोग सिंपैथेटिक होंगे परंतु एम्पथी नहीं बता सकेंगे।
डॉक्टर साहब, सिंपैथी और एम्पथी के बीच में कुछ डिफरेंस है या दोनों एक ही है?
नहीं नहीं, डेफिनेटली, क्योंकि सिंपैथी ये है कि फॉर एग्जांपल कि भी जो ऐसे पेशेंट आते हैं
जी,
उनको मैं सिंपैथी दिखाऊंगा क्योंकि मैं अलग से सोचता हूँ कि भी ये भयानक समस्या है, नहीं बहुत बड़ी तकलीफ है, परंतु जो इससे गुजरा है उसने सचमुच उसका अनुभव किया है।
बिल्कुल,
तो जो वह बातें समझाएगा वो बहुत अच्छी होगी, और भी अच्छी होगी, अपनी अनुभव से सुनाएगा।
बिल्कुल
ना, और वह उसको एक अच्छे वाइब्रेशंस भी दे सकता है, हम भी दे पाएंगे, परंतु जब हम वो स्टेज में जाए ना, जिनको सिंपैथी अच्छा कर सकेंगे। तो इसीलिए सिर्फ सिंपैथी नहीं बतानी है, कहते हैं कि भाई सिंपैथी और एम्पैथी में फर्क क्या है। सिंपैथी ये है कि मैंने सुना कि आपके सामने ऐसी ऐसी समस्या हुई कि जैसे अर्थक्वेक हुआ उसमें आप बच गए, आपके आसपास बहुत सारे लोग मर गए, तो मुझे एक सहानुभूति होगी। परंतु एम्पैथी वह है कि जब मैं वहां जाकर के, जैसे कहते हैं कि आप मेरे शूज पहनेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये कहाँ चुभ रहा है, अन्यथा आपको मालूम नहीं पड़ेगा। तो ऐसे ही वो अच्छा कर सके, इसीलिए माना गया है, भले एक कंट्रोवर्सी है बहुत बड़ी, परंतु ये माना गया है। मैं सच भी समझता हूँ कि भी कोई व्यक्ति की जो एंग्जाइटी से गुजरा है, जो पैनिक डिसऑर्डर से गुजरा है, और वही अगर सचमुच काउंसिलर बने, ऐसे ही नहीं, आजकल तो ऐसे ही कोई भी काउंसिलर बन जाता है, वह सही नहीं है। अगर वो प्रॉपर एजुकेशन ले ना, वो कोर्स करे और वो काउंसिलर बने, तो वो अच्छा काउंसिलर बन सकता है। अगर वो कंप्लीटली से बाहर निकला है
जी,
है ना, उस समस्या से अगर वो पूरी तरह से बाहर आ गया है, उसने प्रॉपर जो कोर्सेस करने हैं वो कोर्स किए हैं, एजुकेशन लिया है, फिर वो काउंसिलिंग करता है, तो अच्छा काउंसिलर बन सकता है, क्योंकि उसमें एम्पथी होगी। मेरे में एम्पथी नहीं होगी क्योंकि मैंने अनुभव नहीं किया।
बिल्कुल, साथ ही साथ वो एक्सपीरियंस के उन्हें टॉप टू बॉटम चीजें पता होगी,
पता होगी,
तो उससे जब पेशेंट के साथ में वो डील करेंगे तो उन्हें पता होगा कि किस तरह से उससे बाहर निकालना है।
बिल्कुल, जैसे मैंने किताबों में पढ़ा है
जी,
लेकिन उस व्यक्ति ने खुद अनुभव किया है, तो इसके कारण वो अच्छा काउंसिलर बन सकता है। और पीटीएसडी में और भी एक बात मदद रूप हो सकती है
जी,
कि ऐसा सोचे कि जैसे कर्म का सिद्धांत है कि मैंने कुछ तो भले कहीं कर्म मेरे नेगेटिव भी हो सकते कि जिसके कारण हादसे का मैंने सामना किया
जी,
परंतु शायद अच्छे भी थे कि मैं बच गया।
ट्रू
है ना, दोनों पहलुओं पे व्यक्ति सोचे तो उसको खुशी होगी
जी बिल्कुल।
और यहाँ भी वही बात है, पहले भी हमने अच्छे से चर्चा की इस बात की कि जब घटनाएं होती है तो आप कौन से पहलुओं को पकड़ते हैं वो इम्पोर्टेंट है। हर घटना में नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है ना, जो व्यक्ति स्टेबल है नहीं, जो खुश है सुखी है वो अच्छाई को पकड़ता है, जो दुखी है जो डिप्रेस्ड है ना वह नेगेटिव को पकड़ता है। तो यहाँ पर भी इन पेशेंट्स को पॉजिटिव को पकड़ना सिखाए तो भी बहुत अच्छा है।
डॉक्टर साहब, ये तो हमने जान लिया कि किस तरह से सेल्फ हेल्प अपने को मदद करता है कि अगर हम इस बीमारी से बाहर निकलना चाहते हैं तो सेल्फ हेल्प बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, लेकिन साथ ही साथ क्या मेडिसिन का भी उतना ही बड़ा रोल है?
बिल्कुल, पीटीएसटी में डेफिनेटली मेडिसिन देनी चाहिए। अच्छा। अन्यथा वो दिन में हो सकता है कि 20 बार उसको अटैक आ जाए, 25 बार भी अटैक आ जाए। तो जो भी इस प्रकार के पीटीएसटी के पेशेंट्स है तो उनको मेडिसिन जरूर देनी। एक बार तो मैं कहूंगा थोड़ा हायर डोज भी अगर 5-6 दिन देना पड़े तो देना है, कोई नुकसान नहीं। जब आप दवा नहीं देंगे तो उससे जो हार्मफुल इफेक्ट होती है उसका ज्यादा नुकसान है व्यक्ति का।
जी बिल्कुल,
जैसे ना अभी एक बात होती है, कई बार कहीं पेशेंट भी पूछते हैं कि भे मैं ये साइकेट्री की मेडिसिन लूंगा तो कहीं पागल तो नहीं हो जाऊंगा। तो कुछ लोगों को ये कहना पड़ता है, भले सबको नहीं कहना है
जी।
कुछ लोग की जिनको वो पॉसिबिलिटी है कि भी आप नहीं लेंगे तो पागल हो जाएंगे, इसलिए लो। भले ड्यूरेशन इम्पोर्टेंट है
जी, बिल्कुल।
कितना समय लेना है, कौन सी मेडिसिन लेनी है वो सब इम्पोर्टेंट है, परंतु शॉर्ट टाइम के लिए लेने में कोई नुकसान नहीं।
डॉक्टर साहब, ऐसा क्यों होता है कि कुछ व्यक्तियों के साथ ही इतना ज़्यादा बुरा हो जाता है कि वो खुद समझ नहीं पाते कि मैंने तो ऐसे कोई कर्म नहीं किए जिसके वजह से मुझे ये सज़ा मिल रही है? तो ऐसा एग्जैक्टली होता क्यों है कि कुछ ही लोगों को इतना ज़्यादा नुकसान सहन करना पड़ता है?
यहाँ अभी दोनों बातें हो सकती है कि एक तो कर्म भी है हमें पता नहीं
जी,
इस जन्म के भी कोई कर्म है हम नहीं जानते हैं। जब व्यक्ति करता है तो उसको तो लगता है मैंने ठीक ही किया है, परंतु वो एक बात, दूसरा आपके थॉट्स भी हो सकते हैं।
अच्छा।
भी जो मानते हैं ना कि जिसको कहा गया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि आप जैसा सोचते हैं ऐसी घटना को आकर्षित करते हो ना, तो भी जो बार 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 सोचता है वह भी एक संभावना है, इसे डरना नहीं। जैसे कहेंगे कि जो सारी बातें है ना वह एक छुरी की तरह है।
अच्छा।
या तो भी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है, भी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट से हम किसको मार भी सकते किसकी जान भी बचा सकते हैं। जैसे भी ये बात बताई तो तब ये सोचना है, डरना नहीं है कि माय गॉड मैंने ये सोचा भी ऐसा होने वाला है मेरे साथ हो जाएगा, तो उल्टा आप ज्यादा सोचेंगे वो कम नहीं होगा। इसके बदले इस बात को पक्का करो कि अब इस पर मुझे काम करना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हमने समझा कि भी जैसे मैं विचार करता हूँ वही वाइब्रेशंस में जाते हैं
जी,
और वह घटना को आकर्षित कर सकते हैं।
बिल्कुल।
तो अब मुझे उसे डरना नहीं है, उससे वह एंग्जाइटी को बढ़ाना नहीं है
जी,
एंग्जाइटी को कम करना है।
बिल्कुल।
और एंग्जाइटी को कम करने का यह तरीका है कि आप उस पर वर्क करिए, है ना, अपने आप भी सेल्फ हेल्प भी करिए, मेडिटेशन भी करिए, जरूरत है तो मेंटल एक्सपर्ट के पास भी जाइए, परंतु वो जो हिस्सा है उस पर तुम्हें जरूर विजय प्राप्त करनी है
जी।
नहीं वह विजय प्राप्त नहीं करेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी।
बिल्कुल।
दूसरा पहलू है कि यह कर्म की बात भी है।
अच्छा।
समझो कोई कहे कि भी वर्तमान में कोई कर्म नहीं किया,
बिल्कुल,
कि भी बड़ा एक्सीडेंट हुआ उसमें एक 4 महीने का बच्चा भी था,
बिल्कुल,
जैसे अभी अभी अखबारों में आ रहा है कि 4 महीने की बच्ची है कि जिसको हार्ट में कोई तकलीफ थी और 1 महीने में उसे शायद 15 बार हार्ट अटैक आ गया, तो भी वो एक स्टोरी बन गई है न्यूज़पेपर्स में
जी।
तो ये कहेंगे कि वो बच्ची ने इस जन्म में तो कोई बुरा कर्म नहीं किया, तो जरूर उसके पास्ट बर्थ का कोई कर्म है कि इसके कारण यह हुआ। अब इससे ये भी सिद्ध होता है ना, ये सारी बात को अगर गहराई से सोचा जाए, नहीं हमारे दर्शक भी अगर इस बात को गहराई से सोचे कि ये जो सारी मान्यता है कि शास्त्रों में भी लिखा है कि मरने के बाद ये अमृत आते वो पकड़ते हैं, है ना, आपको सजाएं देते हैं, पर्वत से नीचे फेंकते हैं
जी।
या तो भाई तेल उबल रहा है उसके अंदर डालते हैं, वो सब सत्य नहीं है।
अच्छा,
भल बताने के लिए ठीक है, उसके पीछे का भाव गलत नहीं था
जी।
यानी कहेंगे कि भाई जिन्होंने शास्त्रों की रचना की उन्होंने क्या गलत किया?
नहीं,
उन्होंने कोई गलत नहीं किया, कि उनका भाव अच्छा ही था कि भी लोगों के कर्म अच्छे हो।
बिल्कुल।
परंतु वास्तव में देखेंगे, थोड़ा गहराई से सोचते हैं तो ऐसा लगता है कि भी भगवान तो प्यार देता है, भगवान सजा नहीं देगा, और नियम के अनुसार होगा। एक जज है भाई, अपने बच्चे को वो प्यार देगा, परंतु अगर उसने सजा की है तो फिर वो जजमेंट भी देगा, अगर अच्छा जज है तो।
बिल्कुल।
तो भगवान ऐसे सजा नहीं देता, एक्चुअली जो सजा मिलती है वो हमारे कर्मों का हिसाब है।
अच्छा।
कि भी मृत्यु हुई, अधिकतर तो कुछ पलों में ही दूसरा जन्म हो जाता है।
ओके।
उसके लिए कहेंगे कि वो गर्भ तैयार है।
बिल्कुल।
भी जिस प्रकार की आत्मिक स्थिति, जैसे उसके संस्कार बने, जैसे उसने कर्म किए, उस अनुसार उसके लिए वह तैयार है। जैसे भी 12वीं में एक बच्चा, उसने मार्क लाए, सब उसके 94% आए, तो उसके लिए वो मेडिकल कॉलेज तैयार है।
बिल्कुल।
भी कहां पर उसे एडमिशन मिलेगा? तो ऐसे यहां पर भी वह एक दूसरा चोला तैयार है, और वहीं पर सजा मिलती है। अब ये भी समझा ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि भी उसके कर्म ऐसे थे कहीं जिसके कारण यह हुआ।
तो ये जो आप कह रहे हैं, ये पास्ट जन्मों की बात कर रहे हैं?
हाँ, पास्ट ही, पास्ट बर्थ की। जो सपोज मेरे कर्म अच्छे नहीं है,
हाँ जी,
तो कोई भगवान सजा नहीं देगा, यमदूत आके सजा नहीं देंगे, परंतु जो जन्म होगा दूसरा वही वैसा उसी माहौल में होगा कि ऑटोमेटिक वहां सजा मिलेगी। जैसे ने और एक उदाहरण, कई बार नहीं सेमिनार्स में भी लोग ये पूछते, तो एक सिंपल एक्सप्लेनेशन यह है कि भी दो बच्चों का जन्म हुआ है ना, एक को तो 5-स्टार फैसिलिटी मिल रही है और दूसरे को माँ कूड़ेदान में डाल के चली गई, तो बच्चे ने क्या बुरा किया?
हाँ, क्योंकि बच्चे ने तो कोई गलती नहीं की है, वो तो
हाँ,
इनोसेंट होता
इनोसेंट,
है
हाँ,
इस जन्म में उसका रिकॉर्ड तो अभी तक शुरू भी नहीं हाँ, हुआ है कि ऐसे में इतनी सारी प्रॉब्लम्स को उन्हें झेलना पड़ता है,
लेकिन वो पास्ट का है।
अच्छा।
या जो भी बहुत बुरे कर्म कर रहे हैं, जो सोच रहे ना कुछ नहीं होगा हमको
जी,
उनको इस पर सोचना चाहिए कि भी ऐसा हो ना, भी मेरा जन्म हो तुरंत इस प्रकार की बातें मुझे फेस करनी पड़े तो कितनी बड़ी सजा है।
बिल्कुल
ना, तो अभी से मैं अच्छे कर्म करूं, डरने के लिए ना, इसमें डरना बिल्कुल नहीं है, ये बातें किसको डरा भी सकती है, परंतु डरना बिल्कुल नहीं है, उल्टा इसमें हमें एक सचेत होना है ना, सजग होना है
जी,
कि मैं कर्म को कैजुअली नहीं लूं। अभी जो भी आपके लिए समय बचा है सचमुच सोचिए कि भी उसको खत्म करना है, और ये हो सकता है, मुश्किल नहीं है।
बिल्कुल।
जो पंचम सिंह, जिन्होंने ब्रह्मा कुमारी इसका सुना, वो डाकू था और वो एक मेडिटेशन करने लगा, तो भी ये तो अभी की बात है। शास्त्रों की बात कहते तो लोग कहते हैं कि अरे वो तो शास्त्रों में था।
ट्रू।
तो इस रीति से अभी भी हो सकता है। विजय प्रकाश नारायण के सामने भी कितनों ने अपने हथियार डाल दिए, तो ऐसे भी ये सब बातें समझ करके दर्शकों में एक रियलाइजेशन आए और अपने आप में चेंज लाए तो बहुत बड़ी बात है
जी,
है ना। कई बार हमें नहीं समझता है कि भी, मैं जानता हूँ एक परिवार को जिनका शराब का बिजनेस था,
अच्छा
ना, तभी तो समझते थे बहुत अच्छा है, क्या बात है, हम तो पैसे कमा रहे हैं भाई, ये तो लीगल बिजनेस है, गवर्नमेंट ने अलाउ किया है। परंतु आगे चल के उनके जीवन में बहुत समस्याएं हैं।
अच्छा
है ना, बिजनेस तो कम हुआ ही, लेकिन बच्चे बीमार हो गए,
अरे।
और कुछ झूठे केस लग गए, तो भी ये सब भी देखो तो एक प्रकार से वह कर्म की बात है। तो बस हमें कॉन्शियस होना है, अपने पर अटेंशन रखना है, जो भी हमारे कंट्रोल में है वो अच्छे से करना है।
बिल्कुल डॉक्टर साहब, अगर किसी रिश्तेदार की हमारे घर में मौत हो जाए तो क्या वो उसका जो सदमा लगता है हमें वो भी PTSD है या कुछ और है?
नहीं, वो PTSD नहीं है।
अच्छा,
नहीं, वो भी एक डिप्रेशन है।
जी,
ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि ये तो हम सबको फेस करना ही करना है।
बिल्कुल,
क्योंकि जब इस प्रकार की बात आती है तब हम थोड़े निराश होते हैं ना, दुखी होते, रोते हैं, और रोना जरूरी है।
बिल्कुल,
है ना, जैसे बच्चे को भी रुलाया जाता है ना, वो पर्पस तो अलग है, जन्म के बाद जो बच्चे को रुलाते हैं क्योंकि उसके लंग्स खुल जाए, तो ऐसे ही कहेंगे कि मृत्यु के बाद भी अगर कोई सचमुच स्टेबल है, कि कोई मेडिटेशन का अभ्यास कर रहा है वो सचमुच यो स्टेबल है, पीसफुल है, फिर तो जरूरी नहीं। परंतु जो शॉक में है परंतु रोते नहीं, ऐसे भी लोग है कि जिनको शॉक तो सदमा लगा है परंतु रोया नहीं, वहां वो रोना जरूरी है। और वो जितना जल्दी से व्यक्ति बाहर आ जाए अच्छा है, कुछ समय तो ठीक है, लेकिन 1 वीक 2 वीक उतने में उसको वहां से बाहर आ जाना चाहिए। अगर वो नहीं आया तो वह भी एक डिप्रेसिव स्टेट है, PTSD नहीं है, कि जहाँ ट्रीट भी किया जा सकता है, विदाउट मेडिसिन भी ट्रीटमेंट हो सकती है, है ना, सेल्फ हेल्प भी बहुत कुछ हो सकती है। अच्छे से व्यक्ति सेल्फ हेल्प करे तब भी उससे लेकिन फिर भी नहीं आ रहा है ना, कई बार तो गिल्ट फीलिंग भी होती है कि भी मेरे कारण ऐसा हो गया।
बिल्कुल,
है ना, अभी अभी मेरा एक केस है
जी,
कि जिसमें उस व्यक्ति ने सुसाइड किया, ना, और सुसाइड से पहले उसने अपने एक बेटे को फोन किया था।
ओके,
ऐसा कुछ न कुछ क्ल्यूज देते, कभी हम इसकी अच्छे से चर्चा करेंगे कि जो लोग सुसाइड करते हैं वह क्या क्या करते हैं। तो उसने एक छोटा सा क्ल्यू दिया था, कुछ शायद ऐसे कि भाई चिंता नहीं करना, कि भी जो आया है वो तो जाता है, ऐसे कुछ ना कुछ उसने बोला था। तब उसे आइडिया भी आई थी कि ऐसा क्यों बोलते हैं, मुझे जल्दी से जाना चाहिए। शायद उसने अपने एक भाई को भी कहा कि भी जल्दी से जाओ तुम डैडी के पास, कुछ तो मुझे लग रहा है कि ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। और वो भाई ने भी थोड़ा सा निग्लेक्ट किया कि भी वो जल्दी से नहीं गया और इसको पहुंचने में देरी हो गई, तब तक तो उसने आत्महत्या कर ली थी। वो एकदम डिप्रेशन में चला गया, खुद को भी कोसने लगा, बिल्कुल
भाई को भी, क्यों नहीं गया?
भाई को भी,
बिल्कुल
भी, भाई की भी ये गलती है, मैंने तो फोन किया था कि भी तुम जल्दी पहुंचो, तुम नजदीक हो,
बिल्कुल,
है ना, मैं तो दूर हूँ, मुझे पहुंचने में देरी लगेगी, तो काफी टाइम लगा उसको बाहर लाने में।
तो क्या
ये भी PTSD नहीं है?
अच्छा,
ये भी PTSD एक प्रकार से कहेंगे थोड़ा सा सीवियर डिप्रेशन है। और इन सब का इलाज अपने आप भी हो सकता है, आध्यात्मिकता भी उसमें बहुत कुछ मदद कर सकती है। और जो व्यक्ति पहले से आध्यात्मिक बातें कर रहा है उसके लिए सबसे बड़ी बात है रोकथाम।
ओके,
कि वो जो डिप्रेसिव स्टेट बनती है वो बनेगी ही नहीं।
डॉक्टर साहब, आज हमने इतनी सारी बातें सीखी, जिसमें मुझे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये लगी कि PTSD जो बीमारी है उसके लिए कहीं ना कहीं हमारे रिलेटिव्स का भी बहुत बड़ा हाथ है कि किस तरह से वो उसे बाहर निकालेंगे। साथ ही साथ सेल्फ हेल्प हेल्प करेगा, और कुछ मेडिकेशंस हैं जो अगर ज़रूरत पड़े तो हमें ज़रूर लेनी चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर कमिंग इन द शो। ओम शांति।
ओम शांति।
दोस्तों, आज हमने क्या जाना, एक नई बीमारी के बारे में चर्चा की जिसका नाम है PTSD। इस बीमारी के अंदर आपको कुछ ट्रोमा से अगर आप गुजरे होते हैं तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स आपके बॉडी और आपके माइंड पर देखे जाते हैं। अगर आपको लगे कि आप ऐसी कोई बीमारी से जूझ रहे हैं तो सबसे पहले मेडिकल ट्रीटमेंट लें। ऐसा मत करिए कि अगर आप समय पर उस बात को छोड़ देंगे तो वो कोई इलाज नहीं है। आपको ज़रूरत है कि आप डॉक्टर के पास जाकर ट्रीटमेंट लें। साथ ही साथ स्पिरिचुअलिटी को आप अपने ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाइए। तो उससे आप महसूस करेंगे कि धीरे धीरे आपके अंदर हीलिंग होने लगेगी और आप इस बीमारी से बाहर निकल जाएंगे। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को एंड करते हैं। आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में, जिंदगी बने आसान। ओम शांति।